भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृहत्याग श्लोक संख्या 57 मेरे विषय बोलिए सवा अद्यतनांद्राजन परतः पंचमे हनी कलेवरम भाष्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति सवा अद्यतनांद्राजन् परतः पंचमे हनी कलेवरम् भाष्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति सवा अद्यतनांद्राजन् परतः पंचमे हनी कलेवरम् भाष्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति शब्दार्थ बोलिए सह वह वा संभवतया अद्य आज तनात से राजन हे राजा परतः आगे पंचमे पांचवे अहनी दिन कलेवरम शरीर हाष्यति छोड़ देंगे स्वम अपनी इच्छा से तत् वह च भी भस्मी राख भविष्यति हो जाएगा। अनुवाद मेरे पीछे बोली हे राजन बहुत संभव है कि वे आज से पांचवें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की नारद मुनि की भविष्यवाणी ने युधिष्ठिर महाराज को उस स्थान को जाने से रोक दिया जहां उनके ताऊ रह रहे थे क्योंकि अपनी योग शक्ति से अपना शरीर त्यागने के बाद ही धृतराष्ट्र को किसी दाह संस्कार की आवश्यकता न थी। नारद मुनि ने संकेत किया कि उनका शरीर स्वतः जलकर राख हो जाएगा। योग पद्धति की सिद्धि ऐसी ही योग शक्ति से प्राप्त की जाती है। योगी इच्छित समय में अपना शरीर त्याग कर सकता है और अपने शरीर को अपनी ही अग्नि से भस्म करके इच्छित लोक को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे नारद जी ने पिछले श्लोकों में आप समझिए कि 41वें श्लोक से शुरू किया था अपना उत्तर। युधिष्ठिर महाराज की चिंता थी कि धृतराष्ट्र कहाँ गए हैं, उनके ताऊ कहाँ गए हैं और कौन उनकी देखभाल करेगा, बहुत चिंतित थे। तो पहले तो नारद जी ने धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि वे कहाँ गए। क्यों? धृतराष्ट्र के नहीं, युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जबकि नारद जी जानते थे तो वो पहले ही बता देते कि धृतराष्ट्र आपके ताऊ कहाँ गए हैं, तो क्यों नहीं उत्तर दिया? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को बहुत चिंता थी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं तथा उनके बिना उनकी कौन देखभाल करेगा। परंतु जाएंगे उनके देखभाल करने के लिए, उनको लौटा लाने के लिए। तो सबसे पहले सिद्धांत 10 श्लोकों में नारद जी ने सिद्धांत समझाया कि सब कुछ भगवान की इच्छा से चल रहा है, भगवान सबका पालन कर रहे हैं। 10 श्लोकों में उन्होंने सामान्य सिद्धांत की शिक्षा दी युधिष्ठिर महाराज के शोक को दूर करने के लिए। इसके बाद फिर धृतराष्ट्र का पूरा हालचाल बता रहे हैं कि कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। और पिछले श्लोक में उन्होंने कहा तस्यांतरायो मैं बाबू, कि अब उनके लिए बाधा मत बनो तुम। संन्यस्ताखिल कर्मणा, सब कर्मों को वो त्याग चुके हैं तो उनके लिए अब तुम बाधा मत बनो। हालांकि अनुवाद में प्रभुपाद जी ने दूसरी तरह से अर्थ दिया है, लेकिन तात्पर्य में फिर उसका इशारा किया है कि इसका दूसरा अर्थ ये भी है तस्यांतरायो मैं बाबू, कि उनके लिए अंतराय मत बनो। क्योंकि धृतराष्ट्र जो है अगले शरीर की तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसा अगला शरीर प्राप्त करना है इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अब इस शरीर की चिंता से जो है कि तुम उनके इस शरीर की सुरक्षा करना चाहते हो तो इससे क्या होगा, अगले शरीर को प्राप्त करने में बाधा पड़ेगी। अब ये इस शरीर को छोड़ करके अगले शरीर को प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं तो तुम जो है ना बाधा मत बनो कि इस शरीर की तुम जो है सुरक्षा करना चाहते हो। तो और फिर युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि ठीक है, अगर शरीर छोड़ देंगे तो फिर उनका दाह संस्कार तो करना चाहिए। तो 5वें दिन के बाद शरीर छोड़ेंगे तो उसके बाद हम उनका दाह संस्कार करें तो उसको भी नारद जी क्या कह रहे हैं कि जाने की जरूरत नहीं है, तच्च भस्मी भविष्यति, वो भी भस्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि धृतराष्ट्र तो अपना शरीर भस्म करेंगे, लेकिन एक ऐसी घटना और भी है, भीष्म देव ने अपना शरीर छोड़ा अपनी इच्छा के अनुसार। तो उन्होंने अपने शरीर को भस्म नहीं किया, उन्होंने अपने शरीर को भस्म नहीं किया, युधिष्ठिर महाराज ने उनका दाह संस्कार किया। सब वर्णन है, महाभारत में भी वर्णन है बहुत विस्तार से, और श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है कि उनके शरीर को जलाया और पूरी विधिवत जो है ना क्रिया की, अंत्येष्टि क्रिया की युधिष्ठिर महाराज ने। तो क्या कारण है, धृतराष्ट्र लोक से अपना शरीर छोड़ा और अपने शरीर को जलाया, भीष्म जी तो और बड़े योगी हैं, भीष्म जी तो और भी बड़े योगी हैं, वो तो जो है धृतराष्ट्र को तो अभी हाल में ही सिखाया गया और बाकी जीवन भर तो भोगी रहे धृतराष्ट्र, लेकिन भीष्म जी तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, तो वो अगर अपने शरीर को जलाना चाहते तो क्या जला नहीं सकते थे, तो फिर उन्होंने अपने शरीर को क्यों नहीं जलाया। इसका एक उत्तर यही है, इसके और भी कई उत्तर हो सकते हैं, एक उत्तर ये है कि वो युधिष्ठिर महाराज को सेवा का अवसर देना चाहते थे, अपने संबंधियों को सेवा का अवसर देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने शरीर को अपनी योग अग्नि से नहीं जलाया, बल्कि सब बता के गए कि मेरे शरीर को कैसे क्या करो, कैसी कैसी क्रियाएं करना है, सब शिक्षा दे के गए। जैसे प्रभुपाद जी ने भी सब शिक्षा दी कि मेरी समाधि एक वहां बननी चाहिए मायापुर में, और वृंदावन में भी कहा समाधि बननी चाहिए, वो स्थान भी जो है सब निश्चित कर दिया कि मैं शरीर छोड़ूंगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि उनका अपने शिष्यों के साथ बहुत अच्छा संबंध था, उन्होंने अपने शिष्यों को अच्छी प्रकार शिक्षा दी थी और उनके शिष्यों ने भी उनके अच्छी प्रकार से सेवा की थी और सेवा की भावना थी, इसलिए प्रभुपाद जी ने सब कुछ बताया कि उनके शरीर छोड़ने के बाद उनके शरीर का क्या किया जाए और कैसे किया जाए, समाधि बनाई जाए, सब कुछ बताया। तो उसी प्रकार से भीष्म जी ने भी सब कुछ बताया, लेकिन धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र को विदुर जी ने कह दिया था कि तुम्हारे लिए उचित नहीं है क्या कि उन पांडवों से सेवा प्राप्त करो। क्यों? पांडव लोग तो सेवा करने के लिए तैयार हैं तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि इस जीवन में या मरने के बाद भी तुम उनसे सेवा प्राप्त करो। क्यों? विदुर जी ने कहा था कि जिन्हें तुमने जहर देकर मार डालना चाहा, घर में आग लगाकर मार डालना चाहा, जिनकी पत्नी का अपमान किया, अब क्यों उनके घर में पड़े हुए हो, अपराध किया, अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है, अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि तुम पांडवों की सेवा स्वीकार करो, है ना? तो इसलिए धृतराष्ट्र ने अपने शरीर को अपनी योग अग्नि से ही जलाना उचित समझा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि योगी इच्छित समय में अपना शरीर त्याग कर सकता है और अपने शरीर को अपनी ही अग्नि से भस्म करके इच्छित लोक को प्राप्त कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। तो अपनी इच्छा के अनुसार योग लोक प्राप्त करता है, तो इसके लिए भगवान गीता में विधि बतलाते हैं 8वें अध्याय में। एक तो कृष्ण मार्ग और दूसरा शुक्ल मार्ग, शुक्ल गति और कृष्ण गति, दोनों गतियों में योगी क्या करते हैं, चाहे वो शुक्ल गति हो चाहे कृष्ण गति हो। शुक्ल गति का मतलब है कि ब्रह्मांड का भेदन करके वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं और ब्रह्म ज्योति से फिर वो भगवान के धाम में भी जा सकते हैं। और कृष्ण गति का मतलब है कि अपनी इच्छा के अनुसार वो पुण्यात्माओं के लोगों को जाएंगे कृष्ण गति। इन दोनों प्रकार की गतियों में वो अपने प्राण को कहां लाते हैं, मूर्धनि आधाय आत्मना प्राण, तो यहां पर वो लाते हैं प्राणों को और सब द्वार रोक लेते हैं। तो जो प्राण है उनके कोई द्वार नहीं मिलता निकलने का, तो इसको फाड़ करके ब्रह्मरंध्र को फाड़ करके प्राण निकलते हैं। तो ये जो है ना योगियों के लिए होता है और योगी लोग फिर जो है ना अपने समय को निश्चित करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अपना समय निश्चित करते हैं, अग्निर ज्योतिर्हा शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदोजना। तो जो ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते हैं, तो वे अपना स्थान निश्चित करते हैं। वो अग्नि का समय होना चाहिए, ज्योति का समय होना चाहिए और दिन का समय होना चाहिए और शुक्ल पक्ष के 15 दिन का समय होना चाहिए और उत्तरायण के 6 महीने का समय होना चाहिए। तो इस तरह से वो जो है ना क्रम से इन देवताओं के द्वारा पहुंचाए जाते हैं और सूर्य लोक के रास्ते से वो जो है ब्रह्मांड के आवरण का भेदन करके ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। और जो कृष्ण गति से जाते हैं तो वो अपना समय निश्चित करते हैं, धूमो रात्र तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। तो वे भी योगी हैं लेकिन वे धुएं के रास्ते से जाते हैं, धूमो रात्रि का समय हो और फिर कृष्ण पक्ष के 15 दिन का समय हो और फिर दक्षिणायन के 6 महीने का समय हो। तो इन देवताओं के द्वारा वे पहुंचाए जाते हैं और चंद्रमा की ज्योति में जाते हैं और वहां से फिर वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी लोक का चुनाव करते हैं, वे कहां जाना चाहते हैं। तो दोनों गतियां जो है योगियों के लिए हैं जो अपने प्राणों को वश में करके और ऊपर चढ़ाते हैं प्राणों को, जिसे आजकल कुंडलिनी कहा जाता है। तो इसके लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। तो ये तो हमने चर्चा की, जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि योगी लोग जो है इस तरह से अपनी इच्छा के अनुसार समय निश्चित करते हैं और शरीर को त्यागते हैं। अब महाभारत में एक अलग से पर्व ही है, नारद आगमन पर्व, जिसमें नारद जी का आगमन हुआ और युधिष्ठिर को सूचना देते हैं। लेकिन इसमें कुछ दूसरे प्रकार से घटना का वर्णन हुआ है। वास्तव में आश्रम मासिक पर्व के अंदर नारद आगमन पर्व एक उप पर्व इसको समझना चाहिए। धृतराष्ट्र तपोवन में गए हैं और पांडव लोग उनका दर्शन भी करने गए थे महाभारत के अनुसार, और 2 साल बीत चुके हैं। धृतराष्ट्र जो है वहां तपस्या कर रहे हैं और पांडव लोगों ने धृतराष्ट्र का दर्शन नहीं किया। तो एक दिन नारद जी देवेच्छा से घूमते घामते राजा युधिष्ठिर के पास आए। अब इसमें जो घटना है वो नारद जी आए हैं और धृतराष्ट्र ने शरीर छोड़ दिया है और वो अब समाचार दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। जीवर्षोपे निवृत्तेषु पांडवेषु यदृच्छया देवर्षिर नारदो राजन आजगामे युधिष्ठिरम्। महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी की पूजा करके उन्हें आसन पर बिठाया। जब ये आसन पर बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर चुके तब युधिष्ठिर ने उनसे इस प्रकार पूछा। तमभ्यर्चय महाबाहु गुरुराजो युधिष्ठिर आसीनम परिविश्वस्तम प्रोवाचय वदतांबर। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे प्रभु, इधर बहुत समय से मैं आपकी उपस्थिति नहीं देखता हूं, बहुत समय से आप यहां नहीं है, सब कुशल तो है ना, अथवा आपको शुभ की प्राप्ति होती है ना? विप्रवर, इस समय आपने किन किन देशों का निरीक्षण किया है बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि आप हम लोगों की परम गति हैं। के देशा परिदृष्टा से किम च कार्यम करोमि ते तंद्रोहि दुजे मुख्य तम अस्माकम परागति। अब नारद जी बताते हैं कि वे कहां से आए हैं और उन्होंने पूछा है कि क्या समाचार है। नारद जी ने कहा, बहुत दिन पहले मैंने तुम्हें देखा था, इसीलिए मैं तपोवन से सीधे यहां चला आ रहा हूं। रास्ते में मैंने बहुत से तीर्थों का दर्शन किया है और गंगा जी का भी दर्शन किया है। चिरदृष्टोऽसि मेत्येवम् आगतोऽहम् तपोवन परिदृष्टानि तीर्थानि गंगा चैव मया नृप। युधिष्ठिर बोले कि हे नारद जी, गंगा के किनारे रहने वाले मनुष्य मेरे पास आकर कहा करते हैं कि महामनस्वी महाराज धृतराष्ट्र इन दोनों बड़ी कठोर तपस्या में लगे हुए हैं। वदन्ति पुरुषामेद्य गंगा तेरे निवासिनः धृतराष्ट्रम महात्मानम आसितम परमम तपः। क्या आपने भी उन्हें देखा है, वे कुरुश्रेष्ठ वहां कुशल से तो है ना। गांधारी कुंती तथा सूत पुत्र संजय भी सकुशल तो है ना। तो महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र के साथ कौन कौन है? गांधारी हैं और कुंती हैं और संजय। गांधारी, कुंती और संजय। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि मैं सुन रहा हूं कि बहुत कठोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या समाचार है, कुशल से हैं कि नहीं है? अपिदृष्ट स्वया तत्र कुशले सा कुरुन्वह गांधारी चा प्रथा चैव सोत पुत्रश्च संजय। आजकल मेरे ताऊ राजा धृतराष्ट्र कैसे रहते हैं प्रभु, यदि आपने उन्हें देखा हो तो मैं उनका समाचार सुनना चाहता हूँ। कथम च वर्तते चाद्य पितामह मैं सपार्थिव स्रोतुम इच्छामि भगवन यदि दृष्ट त्वया नृपः। नारद जी ने कहा, महाराज मैंने उस तपोवन में जो कुछ देखा और सुना है वो सारा वृत्तांत ठीक ठीक बतला रहा हूँ, तुम स्थिर चित्त होकर सुनो। स्थिरी भूय महाराज शृणु वृत्तम यथा तथम यथा श्रुतम च दृष्टम चा मया तस्मिन् तपोवने। गुरु कुल को आनंदित करने वाले नरेश, जब तुम लोग वन से लौट आए तब तुम्हारे बुद्धिमान ताऊ राजा धृतराष्ट्र, गांधारी बहु कुंती सूत संजय अग्निहोत्र और पुरोहित को साथ लेकर कुरुक्षेत्र से कहां गए, हरिद्वार को गए। गांधार्या सहितो धीमान वद्वा कुंत्या समन्वित संजयेन जसोतेन साग्निहोत्रम सयाज कहां। वहां जाकर तपस्या के धनी तुम्हारे ताऊ ने कठोर तपस्या आरंभ की। तपोधन, धृतराष्ट्र को तपोधन कहा गया है। तपोधन का मतलब जिसके बस तपस्या का धन हो और कोई धन नहीं, सब धन छोड़ दिया तपस्या का धन। तो वे क्या करते थे, कहां पर है वो धृतराष्ट्र? नारद जी बता रहे हैं कहां पर, हाँ गंगा द्वार हरिद्वार। तो वहां क्या करते हैं, मुंह में पत्थर का टुकड़ा रखकर वायु का भोजन करते और मौन रहते हैं। धृतराष्ट्र क्या करते हैं, मुंह में पत्थर का टुकड़ा रखा है तो बोल भी नहीं सकते हैं और खाते क्या है, वायु, वायु का भोजन करते हैं और मौन रहते हैं। मुंह में पत्थर का टुकड़ा रख लिया तो फिर बोल नहीं सकते हैं और कुछ खा नहीं सकते। आतस्थेता तपस्तीव्रम पिता तव तपोधन वीताम मुखे समाधाय वायु भक्षो भवन मुनि। उस वन में जितने ऋषि रहते थे वे लोग उनका विशेष सम्मान करने लगे। महातपस्वी धृतराष्ट्र के शरीर पर चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उस अवस्था में उन्होंने 6 महीने व्यतीत किए। कितना समय व्यतीत किया, बिना खाए बिना खाए बिना पिए 6 महीने व्यतीत किए। तो क्या हाल हो गया उनका, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, चमड़ी से ढकी हैं केवल हड्डियां और कुछ नहीं रह गया। वनेसा मुनि भी सर्वे पूज्य मानो महातप तो अगस्थी मात्र शेषहसा सन्मासा न भवन पह। हे भारत, कौन कह रहा है, नारद जी कह रहे हैं। भारत किसको कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को। हे भारत, गांधारी केवल जल पीकर रहने लगी। कुंती देवी 1 महीने तक उपवास करके 1 दिन भोजन करती थी। सबकी तपस्या का वर्णन किया जा रहा है। गांधारी कुछ नहीं खाती हैं, क्या करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, केवल जल। और कुंती महारानी 1 महीने में 1 बार भोजन करती हैं, इतना तपस्या। और संजय 6ठे समय अर्थात 2 दिन उपवास करके 3रे दिन संध्या को आहार ग्रहण करते हैं। संजय की तपस्या है। गांधारी तो जलाहारा कुंती मासो प्रवासिनी संजय षष्ठ भुक्तेन वर्तया मास भारत। प्रभु, राजा धृतराष्ट्र उस वन में कभी दिखाई देते और कभी अदृश्य हो जाते हैं। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण वहां उनके द्वारा स्थापित की हुई अग्नि में विधिवत हवन करते रहते थे। अग्नि की रक्षा ब्राह्मण लोग करते हैं, अग्नि में हवन करते हैं। धृतराष्ट्र ने जिस अग्नि को स्थापित किया है, अग्नि सोम्याज का सत्र जुहोर विधिवत प्रभो दृश्य तो दृश्य तस्व वने तस्मिन पश्य। अब राजा का कोई निश्चित स्थान नहीं रह गया, वे वन में सब ओर विचरते रहते थे। गांधारी और कुंती ये दोनों देवियां साथ रहकर राजा के पीछे पीछे लगी रहती थीं। संजय भी उन्हीं का अनुसरण करते थे। ये नहीं कह रहे करते हैं क्योंकि अब नहीं रहे, धृतराष्ट्र नहीं रहे, इसलिए करते थे। ये सब जो वर्णन हो रहा है भूतकाल का। अनिकेतो थे राजा सा बभुवा वन गोचर ते चापि सहिते देव्यो संजयश्चा तमन्वयुः। ऊंची नीची भूमि आ जाने पर संजय ही धृतराष्ट्र को चलाते थे। धृतराष्ट्र चल नहीं पाते हैं क्योंकि उनके शरीर में शक्ति नहीं है। अब ऊंची नीची भूमि में वो ना तो उतर पाते हैं ना चढ़ पाते हैं, तो संजय उनको सहारा देकर के उतारते हैं चढ़ाते हैं। और सती साध्वी कुंती गांधारी के लिए नेत्र बनी हुई हैं, संजय धृतराष्ट्र को संभालते हैं और कुंती गांधारी को संभालती है, क्योंकि गांधारी को भी नेत्र नहीं है, नेत्र है लेकिन आंखों में पट्टी बांधी हुई है। संजय नृपतेर नेता समेसो विषमेसो च गांधार्याश्चा प्रथा चैव चक्षुरासीन निंदिता। फिर एक दिन की बात है, क्या हुआ, बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने गंगा के कछार में जाकर उस जल में डुबकी लगाई और स्नान के पश्चात वे अपने आश्रम की ओर चल पड़े। तदा कदाचिन गंगाया कच्छे सन्निपसत्तम गंगायाम आप तो धीमान आश्रमा भी मुखो भवन। इतने में ही वहां बड़े जोर की हवा चली जिससे उस वन में बड़ी भारी दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उस अग्नि ने चारों ओर से उस सारे वन को जलाना आरंभ किया। अथवा यो समुद्भूतो दावाग्नि रभवन महाम ददा है तन्वनम सर्वे परिग्री है समन्ततः। सब ओर से पशुओं के झुंड और सांप जलने लगे। अगर आग चारों तरफ से लग जाए तो पशु भी नहीं भाग पाएंगे, वैसे पशु तो भाग जाते हैं, सांप तो नहीं भाग पाते हैं, सांप तो जरूर जल जाते हैं आग में, लेकिन पशु भी कभी कभी नहीं भाग पाते चारों तरफ से अगर आग लगे तो। और बनेले सुअर भाग भाग कर जलाशयों की शरण लेने लगे, तालाबों में जाते हैं, जो जंगल के सुअर हैं तालाब में जाते हैं अपनी रक्षा के लिए। दयत्सु मृग यूथे सुम विजय भेसो समंत वराहाणाम चयूथे सो संत्रयत्सु जलाशयम। राजन सारा वन आग से घिर गया और उन लोगों पर बड़ा भारी संकट आ गया। अब कौन कौन है आग में घिरे हुए, आग में घिरे हुए कौन कौन लोग हैं, धृतराष्ट्र, संजय, गांधारी और कुंती, ये चारों लोग संकट में पड़ गए। उपवास करने से प्राण शक्ति क्षीण हो जाने के कारण धृतराष्ट्र वहां से भागने में असमर्थ थे। धृतराष्ट्र तो उनको खड़े होने में चलने में बड़ी तकलीफ हो रही है, तो कैसे भाग सकते हैं। तुम्हारी दोनों माताएं भी अत्यंत दुर्बल हो गई थी, अतः वे भी भागने में असमर्थ थी, क्योंकि उनकी भी बड़ी कठोर तपस्या है। गांधारी केवल पानी पी करके रहती हैं तो कहां शक्ति मिलेगी, और कुंती महारानी महीने में एक बार भोजन करती हैं तो कहां शक्ति रहेगी, तो तीनों में बिल्कुल शक्ति नहीं थी भागने की। समाविद्ध वने तस्मिन् प्राप्ते व्यसने उत्तमे निराहारे तया राजन मंद प्राणे विचेष्टितः असमर्थोपसरणे शुक्रशे मातरोचते। फिर विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र ने उस अग्नि को निकट आती जानकर सूत संजय से इस प्रकार कहा। तथा सान प्रतिर्दृष्ट्वा बहिनी मायां तमंतिका यदमाहे तथा सोतम संजयम जयताम बरहम। अब धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं, क्योंकि संजय के शरीर में कुछ शक्ति है, संजय की तपस्या उतनी ज्यादा तीव्र नहीं है। संजय क्या करते हैं, कितना कब ग्रहण करते हैं, दो दिन के बाद शाम को ग्रहण करते हैं, तो संजय के पास कुछ शक्ति है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय तुम किसी ऐसे स्थान में भाग जाओ जहां ये दावाग्नि तुम्हें कदापि जला ना सके। हम लोग तो अब यहीं अपने को अग्नि में होम करके परम गति प्राप्त करेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हम लोग मतलब तीनों लोग, हम तीनों लोग अब भाग नहीं सकते हैं, है ना, हम लोग परम गति प्राप्त करेंगे। गच्छ संजय यत्राग्निर् न त्वाम् दहति करेचिन् वयमत्राग्निना युक्ता गमिष्यामः परम गतिम्। तब संजय ने अत्यंत उद्विग्न होकर कहा, अब संजय को चिंता है कि मैं आपको ऐसे संकट में छोड़ करके भाग जाऊं, ये कैसे हो सकता है, हैं? तो संजय को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा, राजन इस लौकिक अग्नि से आपकी मृत्यु होना ठीक नहीं है, आपकी मृत्यु होने की आहवनी अग्नि में, जो अग्नि जो है ना ब्राह्मण लोग जिसमें हवन कर रहे हैं उसमें होना चाहिए, ये लौकिक अग्नि में आप की मृत्यु नहीं होना चाहिए, किंतु इस समय इस दावानल से छुटकारा पाने का कोई उपाय भी मुझे नहीं दिखाई देता है, इस अग्नि में जलना ठीक नहीं आपका। तमवाच तिलोद्विग्न संजय वदताम मन राजन मृत्युरनिष्टोयम् भविता ते व्रथाग्निनाम् न चोपायम् प्रपश्यामि मोक्षणे जात वेदसः। अब इसके बाद क्या करना चाहिए ये बताने की कृपा करें। संजय कह रहे हैं कि क्या करें, आप बताइए क्या करना चाहिए। हालांकि धृतराष्ट्र ने बता दिया था कि क्या करना है, इन संजय फिर भी पूछ रहे हैं कि क्या करूं, इस अग्नि में तो आपका जलना ठीक नहीं है। संजय के ऐसा कहने पर राजा ने फिर कहा, यदत्र अनंतरम कार्यम तन भवान वक्तुम अर्हति इत्युक्तः संजय नेदम पुनराह सपार्थिव। धृतराष्ट्र कह रहे हैं, संजय हम लोग स्वयं गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके चले आए हैं, अतः हमारे लिए इस तरह की मृत्यु अनिष्टकारक नहीं है। हमने गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, जल अग्नि या वायु के संयोग से अथवा उपवास करके प्राण त्यागना तपस्वियों के लिए प्रशंसनीय माना गया है, इसलिए अब तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ, विलंब ना करो। हमारे लिए कुछ भी गलत नहीं है इस अग्नि में जलना। नैस मृत्यु रनिष्टोनो निश्रिता नाम गृहात स्वयं जलमग्नि तथा वायुर अथापि अथवापि विकर्षणम तापसानाम प्रशस्यन्ते गच्छ संजय माचिरम। संजय से ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र ने मन को एकाग्र किया और गांधारी तथा कुंती के साथ वे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। अब देखो पूरी तैयारी कर रहे हैं तो किस दिशा में उन्होंने मुख किया अपना, पूर्व दिशा की ओर तीनों ने मुख किया और बैठ गए। इत्युक्त्वा संजयम राजा समाधाय मनस्तथा प्राणमुखा सह गांधार्या कुंत्या चोपा विशत्सदम। उन्हें उस अवस्था में देखकर संजय ने उनकी परिक्रमा की। अब संजय को अपनी जान बचाना है तो ऐसा नहीं कि भाग है तुरंत, नहीं विधिवत तीनों की परिक्रमा कर रहे हैं संजय। देखो इतने संकट में भी कोई विधि छोड़ते नहीं है, सब विधि का पालन कर रहे हैं। तो आप चारों तरफ से घेरे हुए हैं।